श्रीमद् राजचंद्र मिशन के अंदर हम सब जितने भी साधक जुड़े हुए हैं उन सबको ये आज्ञा है कि सुबह और शाम का देववंदन करना है। ये देववंदन जो है ये एक नमस्कार पद्धति है, वंदन यानी नमस्कार पद्धति। नमस्कार पद्धति इसलिए प्रचलित होती है हर परंपरा के अंदर, जिनको हम अपना आदर्श मानते हैं उनके प्रति नमस्कार वंदन करने का भाव होता है। तो ये देववंदन जो है ये लघुराज स्वामी और ब्रह्मचारी जी ने मिलके इसका संकलन किया था। सुबह का देववंदन अलग श्लोक है, उसमें शाम के देववंदन में अलग श्लोक है। तो यहाँ पर हम आज शाम के देववंदन से शुरू कर रहे हैं। बहुत ही ग्रॉस वर्ड मीनिंग्स मैंने इसके अंदर लिखे हैं और साथ ही साथ इनके भाव क्या है वो तुम्हें पता होना चाहिए। तो कुछ बातें मेक श्योर करना कि देववंदन हम जब भी करते हैं ज्योत जलाकर करना है, क्योंकि देववंदन के अंदर ईश्वर को नमस्कार है। ईश्वर यानी माँ आद्यशक्ति हमारे सामने ज्योत रूप में है। इसके अंदर परमात्मा यानी भगवान को नमस्कार है और इसके अंदर गुरु तत्व को नमस्कार है, तीनों को नमस्कार है। तो अगर हम बिना ज्योत जलाए करते हैं तो उसमें ईश्वर तत्व के नमस्कार हमारे इंक्लूड नहीं होते। ऑल्दो भाव से कुछ भी अलाउड है, लेकिन फिर भी जब हम कोई चित्रपट के सामने देववंदन कर रहे हैं तो वहाँ ज्योत हमेशा जला के करनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर भगवान और सतगुरु इन तीन को नमस्कार करना, कैसे करना, उनमें क्या देखना, उस नमस्कार का क्या परिणाम चाहना, ये सारी बातें इस देववंदन के अंदर उन्होंने इंक्लूड की है स्टेप बाय स्टेप। तो हम लोग यहाँ पर मोस्टली वर्ड मीनिंग्स देखेंगे। मैंने स्टार्टिंग में ऐसा ही लिख दिया है कि देववंदन शब्दार्थ और भावार्थ। देववंदन के संकलन में जैन और वेदांत दोनों के प्राचीन श्लोकों का संकलन किया गया है। इससे यह निर्णय होता है कि आस्तिक और नास्तिक दर्शनों की समन्वय बुद्धि संकलनकर्ता में थी, यही उनकी सबल आध्यात्मिक दृष्टि का प्रमाण है। उन्होंने दोनों श्लोकों नास्तिक दर्शन से भी उठाए हैं और आस्तिक दर्शन से भी उठाए हैं। चलते हैं फर्स्ट श्लोक। प्रथम नमस्कार हम कर रहे हैं परम कृपालु देव को, और ये श्लोक हम सब जानते हैं अम्बालाल भाई ने लिखा है। परम कृपालु देव ने अम्बालाल भाई को संस्कृत पढ़ने की आज्ञा दी थी, तो जब संस्कृत सीख के उन्होंने कुछ पहला लिखा अपनी रचना की तो ये वाला श्लोक बनाया था। तो ये पहला श्लोक अम्बालाल भाई की रचना है। गा लें एक बार।
महादेव शब्द जेतरवात्मजं राजचंद्रम अहं वंदे तत्वलोचनदायकं। जय जय गुरुदेव सहजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी।
इसमें पहला वर्ड है महादेव्या, महादेवी, महादेव्या का मीनिंग, और हेयर इट इज रेफरिंग टू देवा माँ। कृपालु देव की मदर का नाम देवाबा था, मदर ऑफ परम कृपालु देव। कुक्षी रत्नम यानी रत्न कुक्षी, यानी गर्भ में रत्न प्रकट हुआ। रत्न कोई ज्वेल, कोई प्रिशियस ज्वेल उनके कुक्षी के अंदर गर्भ में प्रकट हुआ है। शब्द जीतरवात्मजम यानी इसके अंदर शब्द को जीतने वाले प्लस रवजी भाई प्लस आत्मज, ये तीन वर्ड्स हैं इस एक वर्ड में। शब्द जीतर वात्मजम यानी शब्द को जीतने वाले, इसका मतलब ये होता है कि जिसने अपने स्वरूप को जान लिया है, शब्द को जीत लिया यानी आकाश के पार चले गए। शब्द आकाश की गुण का गुणधर्म है ना, तो उसके पार जो चले गए उसको जीत लिया। किसने जीत लिया? रवजी भाई यानी कृपालु देव के पिता, उनके आत्मज यानी पुत्र ने। ठीक है, शब्द जीतर वात्मजम यानी जिन्होंने स्वात्मा को जान लिया वो कौन है? रवजी भाई के आत्मज यानी पुत्र। ऐसे कौन? राजचंद्रम श्री राजचंद्र जी को। आगे अहम यानी मैं, वंदे यानी वंदन करता हूँ। क्यों वंदन करता हूँ? क्योंकि तत्व लोचन दायकम, तत्व को देखने की दृष्टि। तत्व को देखने की दृष्टि क्या होती है? तत्व को समझना, तत्व को कैसे अप्लाई करना और उस एप्लीकेशन में अनुभव कैसे ढूंढना, इन तीन चीज़ों को उन्होंने हमें दिया है दायकम। क्या दिया है कृपाणु देव ने हमें, तत्व को समझने के नेत्र, दृष्टि यानी नेत्र आंखें दी हैं। और उसमें हम क्या देखते हैं, पहले हम तत्व को समझते हैं, फिर हम उसे अप्लाई कैसे करते हैं ये सब करते हैं, और उसके बाद हम उसमें से अनुभव करते हैं। तो ये तीन चीज़ें उन्होंने हमें पूरा मार्ग उघाड़ कर दिया, इसलिए हम उनको नमस्कार करते हैं। तो भावार्थ में लिख दिया, देवा माँ और रवजी भाई पिता के पुत्र श्रीमद राजचंद्र जी को हम भक्ति भाव से वंदन करते हैं, क्योंकि आपने मुझे तत्व को समझने, जीने और अनुभव करने की दृष्टि दी है। समझ में आता है? अब दूसरा देखो, ऊपर मैंने थोड़ा सा संबंध भी लिख दिया है कि परम कृपालु देव को नमस्कार करने का कारण और थोड़ा डिटेल में। वैसे तो ऊपर हमने लिया था कि तत्व लोचन दायकम, श्रीमद जी को हम नमस्कार क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें तत्व की दृष्टि दे रहे हैं। लेकिन आगे इसको थोड़ा और इसमें लिखा हुआ है तो और उसको इलैबोरेट कर दिया। जय जय गुरुदेव सहजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी। अब ये जय जय वर्ड यहाँ दो बार है। पहला जो जय है वो गुरु के लिए है, और दूसरा जो प्रथम जय गुरुदेव के लिए है, और दूसरा स्वयं के भीतर उनके कनेक्शन के लिए है। जय मतलब जीत को कहते हैं, जय मतलब पाने को कहते हैं, जय फतह कर ली, जय हो गया हम कहते हैं ना। तो पहला जय गुरुदेव के लिए है, यानी गुरुदेव आप अमर रहे, आपका नाम अमर रहे। और दूसरा जय मतलब जीवंत रहे, यानी हमारा आपके साथ का कनेक्शन हमेशा जीवंत रहे, गुरु के प्रति भी महिमा और अपने गुरु के साथ के रिलेशन के लिए भी। गुरुदेव यानी दिव्य गुरु तत्व की बात हो रही है, वॉट एवर यहाँ पर कृपालु देव के रेफरेंस से कह रहे हैं, बट अदरवाइज जो भी गुरु तत्व है उसकी बात है। वो गुरु तत्व कैसे हैं तो लिखा है सहजात्म स्वरूप, यानी जिनमें आत्मा का सहज स्वरूप प्रकट हुआ है, जो सबसे नेचुरल स्वरूप है, जिसके ऊपर कोई कर्म का आवरण नहीं है, वो जिसका प्रकट हुआ है। ऐसे परम गुरु यानी सर्वोच्च गुरु शुद्ध यानी अज्ञान की मलिनता से जो रहित है, और चैतन्य स्वामी यानी नास्तिक दर्शन से जो ज्ञान के स्वामी है और आस्तिक दर्शन से जो ऊर्जा के स्वामी है, उनको हम नमस्कार करते हैं। ये हमारी उस एक लाइन का, इसमें आस्तिक नास्तिक दोनों दर्शनों को लगभग मैंने हर जगह लिया है ताकि हमें पता रहे। भावार्थ क्या बनता है, परम कृपालु देव आप सर्वोच्च गुरु रूप आत्मा के सहज स्वरूप में स्थित हैं। सर्वोच्च गुरु यानी परम गुरु, सर्वोच्च गुरु यानी देखो ऊपर लिखा है ना परम गुरु, सर्वोच्च गुरु रूप आत्मा के सहज स्वरूप में स्थित हैं और अज्ञान की मलिनता से रहित हैं। आप ज्ञान व ऊर्जा के स्वामी हैं, आप सदा अमर रहें और आपसे मुझे भी ज्ञान और ऊर्जा मिलते रहें, यही प्रार्थना। ये हम नमस्कार। समझ में आ रहा है यहाँ तक? क्वेश्चन हम बाद में लेंगे, ठीक है। थर्ड, दूसरा नमस्कार, पहला नमस्कार किसको किया था, परम कृपाणु देव को, और सेकंड लाइन में हमने क्या देखा, नमस्कार करने का कारण क्या है। अब थर्ड श्लोक के अंदर हम देखते हैं ईश्वरीय सत्ता को नमस्कार कर रहे हैं। हमारे सामने दिव्या ईश्वरीय सत्ता कौन है, यहाँ किस रूप में है, ज्योत के रूप में, ठीक है। गा लेते हैं, अब ये दूसरा नमस्कार पूरी ईश्वरीय सत्ता को है। तो ओमकारम क्या है, संपूर्ण ब्रह्मांडीय स्वरूप जो है वो ओमकार है। हमने एकम के सत्संगों में किया हुआ है, भगवद गीता के सत्संगों में किया है, उसमें जो ओमकारम में जो बिंदु है वो क्या है, मैंने बताया था कि जो तीन कर्व्स है वो तो सत्व रजस और तमस है, जो चंद्र बिंदु का वो है वो माया है, और ऊपर बिंदु है वो गुणातीत दशा है, गुणातीत वो ईश्वर का प्रतीक है, ठीक है ना। तो बिंदु क्या है, गुणातीत दशा ईश्वर। संयुक्तम यानी जुड़ी हुई है, संयुक्त होना मतलब कनेक्टेड। नित्यम यानी सदा ही। ध्यायंती यानी एकाग्र होते हैं, ध्यान करते हैं। योगिना यानी योगी जीव, साधक जीव। कामदम यानी कामना पूर्ति, कामना देने वाली। मोक्षदम यानी मोक्ष पूर्ति, मोक्ष देने वाली। चैवम यानी च प्लस एवं और ही। ओमकाराय यानी ऐसे ओमकार स्वरूप को ईश्वर को नमो नमः भावपूर्वक नमस्कार हो। भावार्थ क्या है? संपूर्ण ब्रह्मांड अर्थात गुणातीत ईश्वर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ओमकारम बिंदु संयुक्तम, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। साधक जीव से एक दिव्य दशा पर ही एकाग्र होते हैं। यह ईश्वरीय सत्ता ही कामना पूर्ति करती है और मोक्ष भी देती है, करेगी, क्योंकि माया भी उसी के रूल्स में चलती है और मोक्ष भी उसी के रूल्स को फॉलो करता है। ऐसी संपूर्ण सत्ता को भावपूर्वक नमस्कार हो, ये ओमकारम बिंदु का मीनिंग है। समझ में आया? माँ आद्य शक्ति, जो शिव को मानते हैं वो शिव को कह सकते हैं, जो शिवलिंग को मानते हैं शिवलिंग को कह दो, होली घोस्ट वॉट एवर स्पिरिट, काफ़ी सारे नाम आ सकते हैं इसके अंदर। ओके, आगे तीसरा नमस्कार। पहला नमस्कार किसको था पूजन? परम कृपाणु देव को। दूसरा नमस्कार ईश्वरीय सत्ता को। अब तीसरा नमस्कार किसको आ रहा है? भगवत सत्ता। इसलिए मैंने कहा ना, हमारे पास अवलंबन में तीनों होने चाहिए, कोई एक भी ना हो तो वो विधि ठीक नहीं है। भाव के सामने तो खैर किसी विधि की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन विधि ठीक होगी तो भाव भी ठीक होगा ना, इसलिए विधि को भी हम ध्यान में रखना चाहते हैं हमेशा।
मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते वै अरिहन आदि महा।
मंगलमय, जो मंगल करने वाले हैं, यहाँ मंगल के दोनों अर्थ हैं। पहला मंग प्लस ल यानी शुभ को लाने वाला, और दूसरा मम प्लस गल यानी ममत्व को गलाने वाला। मंगल के हमेशा ये दो मीनिंग्स होते हैं। यहाँ पर वो दोनों मीनिंग इस दोनों वर्ड्स के अंदर है। मंगल करण यानी मंगल के साधन, करण का अर्थ होता है साधन, मंगल करने वाले साधन यानी हमारा शुभ करने वाले साधन और हमारा ममत्व हटाने वाले साधन। मंगलमय मंगलकरण। वीतराग, कौन है मंगलमय और मंगलकरण? वीतराग, राग द्वेष रहित। और वीतराग में भी क्या मंगलमयी है तो कहते हैं उनका विज्ञान। वीतराग में भी मंगलमयी क्या है, उन्होंने केवल ज्ञान पाया, उन्होंने इतने अतिशय पाए, वो तुम्हारे लिए मंगलमयी नहीं है, वो उसकी तुम स्तुति करते रहो। मंगलमयी तुम्हारे लिए क्या है? वीतराग का जो विज्ञान है, ज्ञान जिसमें, ये विज्ञान क्या है, इसमें चार पॉइंट्स मैंने दिए हैं यहाँ। ऐसा ज्ञान जिसमें कारण कार्य सिद्धांत की प्रमुखता है, दूसरा ऐसा ज्ञान जो तीनों काल में एक जैसा रहता है, विज्ञान ऐसा ही होता है, ऐसा ज्ञान जिसमें स्पष्टता है, और ऐसा ज्ञान जिसमें प्रयोग की प्रैक्टिकल करने की विधि है। तो हम उनको नमस्कार करते हैं जिनमें ये चारों चीज़ें हैं, वीतराग विज्ञान। हम वीतराग को भी क्यों नमस्कार करते हैं? जैसे जैनिज्म में एक पूरा सेक्ट है जो खाली उनके बाह्य जो उनकी लब्धियां हैं ना, उसको नमस्कार कर रहा है कि भगवान आपके अंदर इतने गुण हैं, भगवान आपके अंदर इतनी शक्तियां हैं, भगवान आपको तो आपने इतने शत्रुओं का नाश किया। लेकिन देववंदन के अंदर, ये श्लोक के अंदर खास लिख रहे हैं कि हम वीतराग विज्ञान को नमस्कार कर रहे हैं। ये दिगंबर का एक शास्त्र है, आई बिलीव नियमसार उसका ओपनिंग है, ऑल्दो आई एम नॉट वेरी श्योर। ये मेरे घर पर कोई डायरी है, उसके अंदर ना सभी श्लोक कहाँ से आए हैं वो लिखे हैं। अभी मुझे जितना याद है मैंने इसमें लिखा, लेकिन होपफुली ये नियमसार की का पहला श्लोक है। और उसमें नियमसार दिगंबर लोगों का एक पंच शास्त्र जो है उसमें से एक मेन शास्त्र है। दूसरे शास्त्र याद है? समयसार, प्रवचनसार, नियमसार, अष्टबाउड़, ये सारे उनके शास्त्र हैं। तो एक शास्त्र में है और उसमें उन्होंने खास कहा है कि वीतराग की पूजा करनी है तो करो, लेकिन उसके विज्ञान के कारण, उनके अतिशयों के कारण नहीं, कि उनके पास ये लब्धियां हैं उसके कारण नहीं। ओके, सो कहा कि वीतराग को भी हम नमस्कार कर रहे हैं। वीतराग हमारे लिए मंगल का साधन है, लेकिन वीतराग में भी मंगल का साधन क्या है? उनका विज्ञान। आगे कहते हैं नमो यानी नमस्कार करते हैं ताही उस वीतराग विज्ञान को, ताही यानी उसे, किसको? वीतराग विज्ञान को, जाते भय कि उसको फॉलो करके हो जाते हैं। जाते भय का मतलब हम भी हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं? हाँ, जाते का मतलब जाना और भय मतलब होना, इसलिए जाते भय हो जाते हैं अरिहंत आदि यानी सभी अरिहंत भगवान महान अपना महान अर्हत्व प्रकट करते हैं। मीनिंग क्या कह रहे हैं? ईश्वर को नमस्कार करने के पश्चात अब भगवान को नमस्कार करते हैं। भगवान मंगल रूप है, राग द्वेष रहित हैं और उनके द्वारा बताए हुए साधन वैज्ञानिक है, उनका पालन करने से अपने भीतर अर्हत्व प्रकट होता है। ये इस श्लोक का मीनिंग है, समझ में आता है? मंगलमय मंगल का। आगे अब नेक्स्ट में बताते हैं कि भगवान को हमने नमस्कार किया लेकिन उस नमस्कार का कारण क्या है, और ज्यादा डिटेल में क्या कह रहे हैं।
विश्व भाव व्यापी तदपि एक विमल चित्रो ज्ञानानंद महेश्वरा जयवंता जिन भू।
ये जो वीतराग भगवान होते हैं ये कैसे होते हैं, उनका स्वरूप थोड़ा डिटेल में ला रहे हैं। विश्व भाव, इनके अंदर विश्व मंगल का भाव है, सभी का कल्याण हो, सबका मंगल हो, ये भाव है। और व्यापक है, जिनमें व्यापक है, विश्व मंगल की भावना व्यापी यानी जिनमें व्यापक है। तदपि तो भी एक यानी केवल विमल यानी मल रहित, कोई दोष नहीं है उनमें, चिद्रूप यानी निज आत्मस्वरूप में ज्ञानानंद यानी ज्ञान और आनंद से संपन्न महेश्वरा जो महेश यानी शिव स्वरूप हुए हैं, जयवंता सदा अमर है, जिन भूप जिन भगवान को राजा की उपमा दी है क्योंकि सबके मंगल का भाव तो है, सबसे अधिक शक्तिशाली तो है, मोक्ष मार्गी जीवों के मार्गदर्शक है, हाँ इसलिए इनको राजा की उपमा दी है। तो इसका टोटल भावार्थ क्या बनता है? भगवान को नमस्कार करने का कारण यह है कि उनमें संपूर्ण विश्व के मंगल की भावना व्यापक है लेकिन फिर भी वो मल रहित आत्मस्वरूप में मग्न है। देखो, तुम्हें किसी का अच्छा करने का मन भी करेगा ना तो तुम्हारे भीतर कहीं ना कहीं अशुद्धि आ जाएगी, कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशंस आ जाएगी कि सबका मंगल का मैं तो भाव कर रहा हूँ, देखो मेरी बात ही नहीं सुन रहा, देखो वो तो मेरे अगेंस्ट सोच रहा है, वो तो मेरे अगेंस्ट बोल रहा है। लेकिन भगवान कैसे हैं? विश्व मंगल की भावना भी है लेकिन भीतर से बिल्कुल विशुद्ध है, बिल्कुल मल रहित है। जो आत्मस्वरूप ज्ञान और आनंद से संपन्न है और शिव स्वरूप ही है, ऐसे भगवान हमारे राजा यानी हमारे स्वामी हैं और वह सदा अमर रहे अर्थात मोक्ष मार्ग अमर रहे। वह अमर रहे मतलब उनके द्वारा बताया हुआ मोक्ष मार्ग अमर रहे। ये पूरा समझ में आता है? एक बार दिखाओ ऊपर से नीचे तक। देखो, विश्व भाव व्यापी तदपि, पूरे विश्व मंगल का भाव है उनके अंदर व्यापक, तदपि यानी तो भी एक विमल चित रूप, फिर भी उनके आत्मा में एक नए पैसे की मलिनता नहीं है, विमल है। क्यों मलिनता नहीं है? क्योंकि वो ज्ञान और आनंद से भरपूर हो गए हैं और महेश्वरा स्वरूप यानी शिव स्वरूप हो गए हैं, खुद ही सर्जक है, खुद ही संचालन कर रहे हैं, सब कुछ खुद करे। आगे जयवंता जिन भूप, ऐसे जिनेश्वर भगवान का मार्ग हमेशा जयवंत रहे, अमर रहे, ऐसी बात करें। एक बार पूरे श्लोक से भी पढ़ते हैं ना तो पूरा समझ में आ जाता है कि कहना क्या चाह रहे हैं। ऊपर सिक्स, अब चौथा नमस्कार आ रहा है। पहला किसको था? परम कृपालु देव। दूसरा ईश्वर। तीसरा भगवत सत्ता। अब चौथा प्रत्यक्ष सदगुरु। अब उसके ऊपर बात आ रही है। चौथा नमस्कार, जिन परमात्मा और सदगुरु के बीच की समानता और प्रत्यक्ष सदगुरु को नमस्कार। ठीक है, जो भी प्रत्यक्ष तुम्हारे लिए उनको गाते हैं।
महातत्व
महत्त्व किसको बोलते हैं? कहते हैं संपूर्ण ईश्वरीय सत्ता जो है, जो कॉस्मिक प्रिंसिपल है जिसमें से सब कुछ बाहर आया है, उसको महत्त्व बोलते हैं। बाकी सबको तत्व बोलेंगे लेकिन उसको महत्त्व, क्योंकि वो कारण है बाकी तत्वों के भी उत्पन्न होने का। तो पूरी ब्रह्मांड, ये ईश्वरीय सत्ता, नॉट ब्रह्मांड, ईश्वर की जो सत्ता है, द कॉस्मिक इंटेलिजेंस है, जो कॉस्मिक प्रिंसिपल है, उसे महत्तत्व कहते हैं। और वो महनियम है, यानी ईश्वरीय सत्ता का बीज जो मनुष्य में है, दोनों को कनेक्ट करना पड़ेगा ना, वो तो महत्तत्व है, लेकिन उसका एक पार्ट जो मनुष्य के भीतर है उसे महनीय बोलते हैं। वो महनियमय यानी मनुष्यमय हो गया है, महनियमय यानी वो ईश्वरीय सत्ता का बीज जो मनुष्य में है। महाधाम ये शब्द उन्होंने दिया है ईश्वर के लिए, और गुणधाम वर्ड दिया है उन्होंने मनुष्य के लिए। महाधाम यानी ईश्वरीय धाम, और गुणधाम यानी मनुष्य में रहे हुए गुणों का घर। वो ईश्वर के जितने भी गुण हैं वो मनुष्य में भी तो है ना कहीं ना कहीं, तो वो मनुष्य से भी रिलेट किया है। कहते हैं वो कैसा है गुणधाम, तो कहते हैं चिदानंद, उसमें चैतन्य का आनंद है। परमात्मा, वो परम शुद्ध आत्मा है। वंदो यानी नमस्कार करते हैं। रमता राम, रमण करने वाले विचरते हुए राम, जो स्वयं के अनुभव में प्रकाश में है। इसलिए इसका भावार्थ लिखा, ईश्वरीय सत्ता का बीज प्रत्येक मनुष्य में सत्ता रूप से उपस्थित है। यस, यह सत्ता गुण रूप से विद्यमान है। यस, आस्तिक दर्शन में जाओगे तो अच्छा लिखा ही आगे, जिन्होंने वह गुण उजागर किए हैं वो नास्तिक दर्शन की अपेक्षा से, अथवा जो गुणातीत हुए हैं वो आस्तिक दर्शन की अपेक्षा से। इसमें दो अपेक्षाएं हमेशा चलती रहेगी। एक है जिन्होंने आत्मिक गुणों को उजागर किया, अनंत आनंद, अनंत सुख, अनंत वीर्य, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, ये हम बोलेंगे नास्तिक दर्शन की अपेक्षा से। और एक है गुण को उजागर करना, यानी सत्व, रजस और तमस के पार चले जाना, वो कौन से दर्शन से होगा? आस्तिक दर्शन। तो यहाँ पर इन दोनों की हमेशा अपेक्षा चलेगी कि गुणधाम जो है, नास्तिक दर्शन से गुणधाम क्या हुए? जिसने अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन प्रकट किया। और आस्तिक दर्शन से गुणधाम क्या हुए? जो सत्व, रजस और तमस से पार चले। ये क्लियर रखना, तभी तुम्हें समझ में आएगा। तो लिखा है इसमें यह सत्ता गुण रूप से विद्यमान है, जिन्होंने यह गुण उजागर कर लिए हैं। मैं इसमें और क्लियर लिख दूंगी, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन वगैरह, अथवा जो गुणातीत हो गए हैं, सत्व, रजस, तमस के पार चले गए हैं और चैतन्य के आनंद में मग्न है, उन्हें हम नमस्कार करते हैं। ऐसे जीव स्वयं के अनुभव प्रकाश में रमण करते हैं। विशेष यहाँ रमता राम शब्द में प्रत्यक्ष सद्गुरु देव का स्मरण होना चाहिए। रमता राम उसको बोला है जो तुम्हारे सामने खेल कूद रहा है, टेनिस वेनिस नहीं है, मतलब खेल कूद रहा है, मतलब वो सामने विचरण भी कर रहा है और अपने चिद्रूप स्वभाव के अंदर भी है, दोनों काम है। ओके, सेवन। जिन परमात्मा और सद्गुरु को नमस्कार करने का रिजल्ट क्या है, परिणाम क्या है, वो इस गाथा में कहते हैं। इसमें एक छोटी सी एनालॉजी दी है, उपमा दी है। तीन भुवन चूड़ा रतन समश्री चिन्ह के पाए। चूड़ा रतन क्या होता है? चूड़ा कंगन में रत्न जो है वो अलग से दिखता है ना, कंगन में जैसे रत्न अलग से दिखता है, ऐसे ही तीन भुवन में जिन के जो पाए है, जिन का जो मार्ग है, जिन की जो दशा है, वो अलग से नजर आती है, चमकती है। ये बात कर रहे हैं, तीन भुवन चूड़ा रतन समश्री जिसके पाए, यानी जो जिन भगवान है, यहाँ जिन भगवान भी ले सकते हैं, सद्गुरु भी ले सकते हैं। जिन का अर्थ परमात्मा भी होता है, और जिन का अर्थ हम एक बार जिन जिन के लिए जैसे हम बोल देते हैं ना, जिन के लिए है भाई, यानी हु एवर यू आर रेफरिंग टू, जैसे हम लेटर्स में नहीं लिखते हुम सो एवर इट में कंसर्न, तो ये जिन वर्ड भी हुम सो एवर इट में कंसर्न इस तरह से यूज कर लेते हैं। तो इट इज नॉट नेसेसरीली जिन परमात्मा, इट कैन बी प्रत्यक्ष सदगुरु ऑल्सो। तो तीन भुवन यानी तीन लोक, चूड़ा रतन यानी चूड़ी कंगन में रत्न, सम यानी समान, श्री चिन्ह यानी भगवान अथवा सदगुरु, पाए यानी चरण, नमत यानी नमत करने से पाइए पाते हैं, आप पद उनका पद, उनका पद क्या है? हमारा मूल पद, सब विधि, प्रत्येक विधि से बंध नशाए, बंध का नाश करने वाले हैं। जिन परमात्मा और होना चाहिए, सद्गुरु को यह उपमा दी है, जैसे कंगन में रत्न चमकता है, उसी प्रकार से श्री जिन के चरण, चरण यानी बताया हुआ मार्ग, चरण का मतलब अब हम लोग चरण लेते हैं, लेकिन पहले चरण का मतलब हमेशा मार्ग ही होता था, तीन भुवन में अलौकिक है, उस मार्ग को हम नमन करते हैं कि जिनकी प्रत्येक विधि का पालन करने से बंध का नाश होता है। सब विधि बंध नशाए, ये लिखा है ना, जो भी विधि बताते हैं वो तुम्हारे बंध का नाश करने के लिए ही है। अब तुम बंध बांध लो तो वो तुम्हारा प्रॉब्लम है, लेकिन उन्होंने बंध का नाश करने के लिए ही बताया। समझ में आ रहे हैं यहाँ तक? आगे चलते हैं। अब जिन परमात्मा के, अब सीधा दर्शन के परिणाम की बात कर रहे हैं इसमें और इसके बाद वाले दोनों श्लोक में। जिन परमात्मा के दर्शन का परिणाम, सद्गुरु के दर्शन का परिणाम, ये सारे आ जाएंगे। ये जैनिज्म की एक बहुत पुरानी स्तुति है, इसलिए ये खास स्तुति तब बोली जाती है कि जब हम लोग टेम्पल में एंटर करते हैं और भगवान का पहला दर्शन होता है, तब ये स्तुति गानी होती है। तो हम लोग भी जब जाते थे भगवान के पास, तो पहले तो निस्सी बोलते थे, और जिस समय में भगवान की मुख मुद्रा का पहला दर्शन हुआ या उनके सामने जाकर हम विधिवत दर्शन करते थे, तो सीधी यही गाथा गानी होती है। ये चारों लाइन्स क्या है?
दर्शनम स्वर्ग सोपानम, दर्शनम मोक्ष साधनम, दर्शनाद दूरित ध्वंसी, वंदनात वांछित प्रदः, पूजनात पूरक क्षीणा, जिनः साक्षात् सुरः।
अब यहाँ दर्शन की फोर स्टेजेस बताई है कि दर्शन करने से क्या चार अलग अलग तरह के लाभ हो सकते हैं, और जिसको दर्शन से ये लाभ चाहिए उसे दर्शन के बाद वंदन और वंदन के बाद पूजा करनी चाहिए। यही शब्द आ रहे हैं ना, दर्शनाथ, फिर वंदनाथ और फिर पूजनाथ, तीन वर्ड आ रहे हैं ना। दर्शन से पहले बता रहे हैं क्या चार लाभ होते हैं, वो पहले दो लाइन्स में बताएंगे, और जिससे ये लाभ चाहिए, एक के ऊपर एक मतलब हायर लाभ है, तो उसको दर्शन के बाद वंदन करना चाहिए। खाली देख लिया इतना ही नहीं, उसके बाद वंदन नमस्कार झुक के करना चाहिए और उसके बाद पूजा करनी चाहिए। ये तीनों बातें, यानी इस तरह से ये पूरा फोर लाइंस को कनेक्ट किया हुआ है। क्या कहते हैं? दर्शनम, देखने से। क्या देखना क्या है? जिन प्रतिमा के सामने जाकर या सद्गुरु के सामने जाकर देखना क्या है? लिखा है उनके गुणों और दशा को। तुम सामने जाकर आहा प्रतिमा कितनी वाइट है ना, प्रतिमा पर कितने सुंदर ज्वेलरी पहनी हुई है, प्रतिमा ने कितना अच्छा मुकुट है, या अगर तुम सद्गुरु के सामने आते हो तो अरे आजकल तो दुबले लग रहे हैं सद्गुरु, या आजकल तो मोटे लग रहे हैं। जैसे कई बार, जैसे मैं कहती हूँ ना, कुछ लोगों को आदत ही होती है, जैसे उनसे मिलेंगे, आप तो प्रभु बहुत वीक हो गए आजकल, आप तो प्रभु बहुत आजकल आपने गेन कर लिया सीधा। अरे पर प्रभु को देखकर, उनका प्रभुत्व देखना है, उनका उनकी दशा देखनी है, उनके गुणों को देखना है, और तुम चमारों की तरह खाली शरीर ही देख रहे हो। सो पहले ही क्लियर कर दिया वर्ड में, दर्शनम में देखना क्या है, दर्शन में गुणों और दशा को। अब ये हमारा जो चित्रपट है 8 साल पुराना है, 2013 में बनवाया था, तो जितना भी पुराना है, लेकिन जब भी इनके सामने हम जाएंगे तो मुझे तो वहाँ वितरागता और यहाँ गुरु तत्व, ये दोनों ही दिखते हैं। कभी कभी जब मैं उसको उसके अंदर उनके एनवलप में केस में डाल रही होती हूँ, तो मैं देखती हूँ अब ये पुराना हो गया है, अब ये काला हो गया है, लेकिन दर्शन करने के समय, जो सुबह उठ के मेरा प्रथम दर्शन होता है, तो मुझे हमेशा क्या दिखेंगे इसमें, इनके गुण और इनकी दशा, वही कोई ना कोई। ऐसा नहीं कि वो एक ही होता है, वो कुछ भी हो सकता है कि हाँ क्या सौम्यता है इनके चेहरों पर, अरे क्या गुरु तत्व का आकर्षण है, व्हाटएवर, मैं कुछ भी देखती हूँ उसमें। किसको? देव को। दर्शन किसका करना है? देव का। और वो देव यहाँ परमात्मा भी है और सद्गुरु भी है, दोनों को बोला है। देवस्य, दर्शन करने से पहला परिणाम क्या आता है, देवस्य यानी दिव्यता प्रकट होती है हमें। दूसरा परिणाम क्या आता है, पापनाशनम यानी पाप वृत्ति का नाश होता है। तीसरा परिणाम क्या आता है, स्वर्ग सोपानम, स्वर्ग की सीढ़ियां चढ़ता है यानी उच्च गति में जाता है। और चौथा है मोक्ष साधनम यानी मोक्ष को साधता है। देखो दर्शन के ये चार परिणाम है, दर्शन लेकिन देखना क्या है, गुण और दशा को। उसके क्या क्या फायदे होंगे, अंदर दिव्यता प्रकटेगी हमारे मन में, पाप वृत्ति का नाश होगा, ऊंची गतियों को पाएंगे और मोक्ष होगा फाइनली। अब दर्शनाथ, अब आगे हम थर्ड लाइन के ऊपर, श्लोक में चार लाइनें हैं ना, थर्ड लाइन पर आ गए, दर्शनाथ ऐसे देखने से गुण और दशा को। और इसमें ऐसा भी अलाउड होता है कि दर्शन से हम ये चीज़ें मांगें, ये भी अलाउड है कि भगवान के सामने हम ये चार चीज़ें मांगे कि हम में दिव्यता प्रकट हो, हमारी पाप वृत्ति का नाश हो, हम स्वर्ग आदि अच्छी, स्वर्ग यानी अच्छी दशा, अच्छे घरों में जाए ऐसा समझो। स्वर्ग वगैरह हम स्पिरिचुअलिटी में नहीं मानते, तो हम अच्छे घरों में जाए, तुम लोग अच्छे घर में आए हो ना एटलीस्ट अभी, तो अच्छे घरों में जाए और फाइनली हम मोक्ष को साधे वहाँ से, हम ये चार चीज़ें भी भगवान के दर्शन से मांग सकते हैं। ओके तो यही मांगना भी अलाउड है। और दर्शन में हमें उनका देखना क्या है, ज्ञान और गुण और दशा। अब इस प्रकार से दर्शन करने से, इस प्रकार से मांगने से होता क्या, दुरित ध्वंसी, बुरे का ध्वंस यानी नाश होता है। जो हमारे में गलत है, बुरा है, अनुपयोगी है, अनुचित है, उन सबका नाश होता है। वंदनात, लेकिन उसके तुरंत बाद हमारे भीतर वंदन का भाव प्रकट होना चाहिए। वंदन करने से वांछित प्रद, इच्छित फल की प्राप्ति होती है। इच्छित फल क्या है, ऊपर के चार, मुझ में दिव्यता प्रकटे। मान लो किसी के प्रति बहुत गुस्से में है और हम दर्शन करने गए, तो तुरंत हम क्या मांगेंगे, तुरंत उस टाइम हम मोक्ष नहीं मांग सकते, हम उस टाइम क्या मांगेंगे, मुझ में दिव्यता प्रकटे, मुझ में शांति प्रकटे, मुझ में क्षमा प्रकटे, हमें ये मांगना है। तो वो मांग के जब हम वंदन करते हैं तो वांछित प्रद यानी इच्छित फल की प्राप्ति होती है। देखो मतलब तुम्हें कितना कनेक्टेड होना पड़ेगा। हम तो जाते हैं वहाँ पर अपने ऑफिस के विचारों में जा रहे हैं या अपने घर के विचारों में जा रहे हैं, ऐसा नहीं। उनके ज्ञान, उनके गुण, उनकी दशा, वो सबको देखना है, उसके बाद उनसे मांगना है कि मुझे ये चाहिए, मांग कर वंदन करना है, तो क्या होगा, वांछित प्रद, जो भी इच्छा है, इच्छित फल है, उसकी प्राप्ति होती है। उसके बाद पूजनाथ, पूजा करने से पूरक श्रीणाम, पूर्ण लक्ष्मी, शाश्वत लक्ष्मी रूप मोक्ष की प्राप्ति, पूजा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। जिन्ह साक्षात, प्रत्यक्ष जिन परमात्मा अथवा साक्षात सद्गुरु, साक्षात लिखा है ना वर्ड, साक्षात वर्ड यूज ही करेंगे प्रत्यक्ष के लिए, जो सामने है। सुरद्रुमो, उन्हें कहा है कि ये देवों दिव्यता, सुरद्रुम, सुर होते हैं देव, लेकिन यहाँ देव वर्ड हमने यूज किया है किसके लिए, दिव्यता के लिए। और द्रुम यानी जो कमल का पत्ता होता है ना, कमल जिस पत्ते पर होता है उसे द्रुम पत्रक कहा जाता है। यानी जैसे कमल अलिप्त होता है, वैसे सद्गुरु भी या जिन परमात्मा भी अलिप्त के अलिप्त ही रहते हैं। वो तुम्हें ये सब दे सकते हैं लेकिन तुम्हें देकर ये बंधते नहीं है कभी भी, वो उसमें हमेशा अलिप्त के अलिप्त रहेंगे। तो इसका भावार्थ क्या बनता है, जैनों की दर्शन स्तुति का यह प्रचलित श्लोक है और प्राचीन काल में से मंदिर प्रवेश करके भगवान के प्रथम दर्शन करते ही गाया जाता है। परमात्मा के दर्शन से चार लाभ होते हैं, हृदय में दिव्यता प्रकटती है, पाप वृत्ति का नाश होता है, स्वर्ग आदि शुभायु बंधती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। जिसके जैसे भाव होते हैं उसे उस अनुरूप प्राप्ति होती है, परंतु यह अनिवार्य है कि दर्शन करते हुए परमात्मा अथवा सद्गुरु के गुण अथवा दशा का दर्शन होना चाहिए। इस प्रकार देखने से हमारे भीतर जो बुरा है उसका नाश यानी ध्वंस होता है। वंदन करने से इच्छित फल की प्राप्ति होती है और पूजा करने से शाश्वत लक्ष्मी यानी मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसे साक्षात जिन परमात्मा अथवा सद्गुरु अनेक दिव्यताओं के बीच रहकर भी उनसे अलिप्त रहते हैं। विशेष भाव, श्लोक का मूल भाव यह है कि परमात्मा अथवा सद्गुरु का दर्शन भावपूर्वक उनकी दशा और गुणों को देखते हुए होना चाहिए। समझपूर्वक करे हुए दर्शन वंदन पूजा का परिणाम मोक्ष ही होता है। ये सारा भयू आपको ध्यान में रखते हुए ही आज मैं लिख रही थी कि भयू को कैसे समझ में आएगा। आपने बोला ना कि शायला की तरह हमें एक एक वर्ड ब्रेक करके समझाओ, सो आई स्टार्टेड राइटिंग के चलो बात खुल रही है, गुड। इसलिए आज दस्तक मैंने लिखे हैं तो दस्तक ही करेंगे ताकि और फिर गाएंगे तो हमें रिलेट हो पाएगा कि कितने मीनिंग्स याद आ रहे हैं। और तुम लोगों को, तुम गुड बच्चे होगे तो मैं तुम्हें नोट्स भी शेयर करूंगी। नाइन्थ, अब ये देखो वो परिणाम के पार्ट वन था और अब ये पार्ट टू है। वो वाला पूरा संस्कृत में था, ये वाला उसका हिंदी वर्जन है, ठीक है। इसको और सिंप्लीफाई कर दिया है, गाते हैं। प्रभु यानी ईश्वर, भगवान, सतगुरु, तीनों को इन्वॉल्व कर दिया, ठीक है। दर्शन यानी गुण और दशा को देखने से स्वरूप समझोगे तभी तो देख पाओगे ईश्वर में क्या देखना है, भगवान में क्या देखना है और सतगुरु में क्या देखना है। तुम सतगुरु में भगवान जैसा कुछ देखना चाहोगे, नहीं दिखेगा, क्योंकि तुम्हारे लिए तो भगवान 24/7 बैठे हुए प्रतिमा है, तो सदगुरु थोड़ी बैठी रहेगी पूरा दिन। तुम भगवान में ईश्वर देखना चाहोगे तो नहीं मिलेगा, क्योंकि भगवान तो भगवान है, लिमिटेड इन टाइम एंड स्पेस, ईश्वर इज बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस। तो किस में क्या देखना ये पहले बहुत क्लियरली हमें मालूम होना चाहिए। तो इसमें क्या कहा, प्रभु यानी ईश्वर, भगवान और सदगुरु, उनका दर्शन स्वरूप समझ कर, दर्शन करने से सुख संपदा, सुख रूपी संपत्ति आती है, नव निधि की प्राप्ति होती है। ये नौ प्रकार की निधियाँ हैं आस्तिक दर्शन में, और नई नई निधियाँ अर्थात नए नए गुण, ये नास्तिक दर्शन की अपेक्षा। क्लियर होता है, जैसे हम हनुमान चालीसा में भी कहते हैं ना अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, तो यहाँ पर भी नौ निधि की बातें हैं अगर हम आस्तिक दर्शन की अपेक्षा लेते हैं। लेकिन अब हम अध्यात्म में है तो हमें सांसारिक निधियों की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, हमें क्या चाहिए, नए नए गुण प्रकटे हमें, प्रेम का गुण, शांति का गुण, सुख का गुण, ये सारे गुण प्रकट में हो तो अध्यात्म में हम नास्तिक दर्शन का मीनिंग ज़्यादा यूजफुल लेते हैं। सकल यानी सभी, मनोरथ यानी इच्छाएं, सिद्धि यानी पूर्णता। भावार्थ क्या लिखा है इसका, स्वरूप समझकर जब भी ईश्वर, भगवान या सदगुरु का दर्शन, गुण या दशा का देखना होता है तब सुख रूपी संपत्ति प्रकट होती है। आस्तिक सुख लगेगा कि नहीं जब तुम स्वरूप समझ के करोगे, तो एक तुरंत ही ना अंदर या गुड फीलिंग आ जाती है, ऐसा फील होता है। आस्तिक दर्शन के अनुसार नौ प्रकार की निधियां प्रकट होती है और नास्तिक दर्शन के अनुसार नित्य नए गुणों का आविर्भाव होता है। प्रभु के दर्शन से साधक जीव की सभी मनोकामनाएं, इच्छाएं पूर्ण होती है। और साधक की इच्छाएं क्या होगी, सतगुरु के समागम में रहूं, मोक्ष मिले, गुण प्रकट हो, यही तो इच्छाएं होंगी। लेकिन मैंने नीचे ना नव निधियों के नाम लिख दिए हैं, किसी को इंटरेस्ट हो उसमें तो भी ठीक है, ओके। नव निधियाँ जैसे पद्म निधि है, इसमें तो कहते हैं जिसके पास पद्म निधि होती है उसकी 7 generations जो होती है वो उसी सुख में जीती है, ऐश्वर्य में। उसके बाद महापद्म है तो महापद्म के अंदर 14 generations वैसे जीती है। फिर नीचे आते हैं नील, तो उसके अंदर 7 से आधी हो जाती है, यानी 3.5 generations उस सुख में जीती है। मुकुंद निधि तो वो और कम हो जाती है, तो 1 generation तक ही जी पाते हैं। फिर नंद निधि तो वो एक उसी की लाइफ अच्छे से जी पाता है, उसके नेक्स्ट लाइफ, नेक्स्ट जनरेशन्स में कुछ नहीं होता। मकर में तो ये जनरेशन भी मतलब सुख रूप से नहीं जी पाती, कोई ना कोई तकलीफ आ जाती है। और कच्छप निधि मतलब हर एक अलग अलग, मतलब थोड़ी देर के लिए ही उसको सुख मिलता है। निधि मतलब जो सुख दे सके, ऐसी कोई प्राप्ति उपलब्धि। तो ये एक्चुअली सब आस्तिक दर्शन के अकॉर्डिंगली नौ निधियाँ हैं। लेकिन विशेष स्मरण क्या लिखा है इसमें मैंने, अध्यात्म के क्षेत्र में हमें नास्तिक दर्शन की अपेक्षा से तात्पर्य को समझकर अपने भावों की विशुद्धि करनी चाहिए। तो हमें ये श्लोक समझ में आ गया, नीचे लाना। प्रभु दर्शन सुख संपदा, प्रभु यानी कौन कौन है, इनके दर्शन से सुख की संपत्ति। तुम्हें सुख फील होना चाहिए, इसलिए मैं कहती हूँ हमेशा टाइम लेके करो, हकड़ बकड़ में 3 मिनट में तुम्हें देवनंदन पूरा करना हो तो कभी सुख की फीलिंग होगी? टाइम लेके करो। ज्योत भी जलाओ, मैं तो कहती हूँ ज्योत भी अलग अलग दियों में जलाओ, सुंदर सुंदर दियों में जलाओ, वहीं से एक सुंदरता का भाव तुम्हारे भीतर प्रकट होना चाहिए। नित्य कुछ नया करो ईश्वर के सामने, भगवान के सामने, तो क्या होगा, सुख की फीलिंग होगी और नए नए गुण हमारे अंदर प्रकट होंगे। नवनिधि प्रभु दर्शन से पाइए सकल मनोरथ सिद्धि। प्रभु के दर्शन से हमारी सभी इच्छाएं पूरी होती है, लेकिन किसकी, जो साधक है। ओके नेक्स्ट। अब ये पूरा गुरु गीता से लिया हुआ श्लोक है, श्री सद्गुरु के स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं। ईश्वर के स्वरूप का वर्णन ऊपर कर दिया था महत्त्व महनियम में, भगवान के स्वरूप का भी वर्णन कर दिया था मंगलमय मंगलकरण वितराग विज्ञान में, और अब यहाँ सद्गुरु के स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं। कैसे हैं वो गाते हैं।
ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम् द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकम् भावातीतम् त्रिगुणरहितम् सद्गुरुं तं नमामि।
कैसे हैं सद्गुरु के, देखो इसमें कितनी सारी क्वालिटीज बताई है। ब्रह्मानंदम यानी जो ब्रह्म ईश्वरीय आनंद में है, परम सुखदम जो पूर्ण सुख में है, केवलम जो एक स्वरूप में है वननेस, ज्ञानमूर्ति जो ज्ञान की प्रज्ञा की विवेक की मूर्ति है, आगे द्वंद्वात्वीतम जो द्वैत से परे है, गगन सदृशम जो आकाश की तरह व्यापक है और अलिप्त भी है, ठीक है, उनकी जो एनर्जीज है वो फैलती भी है लेकिन अलिप्त भी रहते हैं, तत्वमस्यादि लक्ष्यम उनका लक्ष्य हमेशा एक ही होता है तत्त्वम असि, भगवद गीता में भी आया था ना तत्त्वम असि, मैं वही हूँ, बस मैं आई एम दैट आई एम, उनका ऐसा ही लक्ष्य अनुभव प्रतीति हमेशा यही रहती है। एकम नित्य जो एक नित्यम जो एक शाश्वत विमल मचलम, विमल अर्थात अशुद्धि रहित और अचलम अर्थात स्थिर, जो अशुद्धि से रहित है और जो स्थिर भी है, सर्वदा साक्षी भूतम कैसे हैं, हमेशा साक्षी रूप में है, भावातीतम जो भावनाओं इमोशन से परे है, त्रिगुण रहितम इसलिए वो लैंड हो ना हो, उनके इमोशंस ना ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं होते, त्रिगुण रहितम सत्व रजस और तमस तीन गुणों से रहित है सतगुरु, जो सत्य का प्रकाश करके असत्य का अंधकार दूर करते हैं, तम नमामि उनको हम नमस्कार करते हैं। भावार्थ क्या है देखो, पूरी उनकी कलेक्टिव क्वालिटीज़, हम ऐसे सतगुरु को नमस्कार करते हैं जो ईश्वरीय आनंद में मग्न है, ये उनकी मुद्रा से पता चलेगा, ये उनके वचनों से नहीं पता चलेगा, वचनों से तो ज्ञान मूर्ति है वो पता चलेगा, लेकिन उनकी मुद्रा से पता चलेगा कि वो ईश्वरीय आनंद में मगन है। जो पूर्ण सुख में है, अगेन ये भी मुद्रा से पता चलेगा, जो एक स्वरूप हुए हैं यानी जो वननेस की उनके बिलीफ है उससे पता चलेगा, जो ज्ञान की मूर्ति है ये उनके सत्संगों से पता चलेगा, जिनकी दशा आकाश की तरह व्यापक और अलिप्त है ये उनके समागम से पता चलेगा। एक एक करके सारे आ रहे, जिन्हें स्वयं की शुद्ध दशा का सदा लक्ष्य है, अगेन ये भी उनके समागम में या उनके मुद्रा में पता चलता है कि हर बात में उनका लक्ष्य तो आत्मा की शुद्धि ही रहता है। श्री सद्गुरु ऐसे एक शाश्वत तत्व में स्थिर है जो मलिनता रहित है, वह सदा अपने भावों के और तीन गुणों के साक्षी है, यानी इमोशंस भी के भी साक्षी है और सत्व रजस तमस, उनमें भी कभी तमस आता है तो वो साक्षी है उसके, एंड दे नोज द विधि कि इस विधि में से मुझे कैसे बाहर किस विधि से मुझे अपने तमस से बाहर निकलना है। जब वो दूसरों को बाहर निकालने की विधि जानते हैं, सब विधि बंद नशाए आया था ना, कि उनके पास प्रत्येक विधि है, प्रत्येक विद्या है कैसे किसी बंध से बाहर निकलना है, तो यहाँ पर सद्गुरु को भी पता है कि जब मैं तमस में जाता हूँ तो मुझे उस तमस से बाहर निकलने के लिए अपने पर कौन सी विधि को उपयोग में लेना है, अर्थात उनसे परे है। किनसे? भावों से और तीनों गुणों से। ऐसे सद्गुरु ही साधक शिष्य के जीवन में सत्य का प्रकाश करते हैं, जिससे जन्मों जन्म का अज्ञान दूर होता है। इन श्री सद्गुरु को हम नमस्कार करते हैं। ये 10th, that's it.